जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर ज्यादा घुटन तो नहीं हो रही खिड़कियां अभी थोड़ा बेटर है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च अजितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। हरे कृष्ण, आवाज सुनाई दे रही है? इधर एक व्यक्ति को जगह है ना, हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान जरासंध के माध्यम से अपना जो भूभार हरण का कार्य है वो करते हैं और फिर स्वयं ही यदुवंश का विनाश करते हैं। तो भगवान कृष्ण वहाँ से निकलते हैं जब 18वीं बार जरासंध का आक्रमण होता है, तो भगवान अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं और पराजय को स्वीकार करके कृष्ण द्वारका के लिए आते हैं। तो भगवान के कई सारे कारण हैं द्वारका में आने के, या फिर द्वारका में सारे जो मथुरावासी हैं उनको स्थानांतरित करने के। तो बाहरी रूप से देखा जाए तो कृष्ण अपने मथुरावासियों की रक्षा करने के लिए द्वारका का निर्माण करते हैं, ये सर्वसाधारण रूप से हमें समझ में आता है। लेकिन वास्तव में उससे अंतरंग कारण क्या था, क्यों भगवान कृष्ण द्वारका का निर्माण करते हैं? तो इसलिए द्वारका का निर्माण करते हैं कृष्ण, और मथुरा को भी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारका बनाने के पीछे एक गूढ़ रहस्य को प्रकट करना चाहते थे कि मेरे जो सर्वाधिक प्रेम के जो विषय हैं, या मैं इस जगत में सर्वाधिक मेरे कौन से भक्तों से प्रेम करता हूँ, तो वह ब्रजवासी हैं। कौन हैं? ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासियों में सर्वाधिक शिरोमणि श्रीमती राधिका हैं। तो इस प्रकार से भगवान सारे जगत को ब्रजवासियों का जो पोजीशन है, स्थिति है, और ब्रजवासियों की जो प्रीति है भगवान के प्रति, उसको स्थापित करने के लिए एक प्रकार से द्वारका का निर्माण करते हैं। क्योंकि भगवान मथुरा में आते हैं तो भी भगवान दुखित हैं, मथुरा वासियों से उतना अधिक अफेक्शन स्नेह उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था जितना स्नेह और अफेक्शन उनको प्राप्त हो रहा था ब्रज में ब्रजवासियों से, या गोपिकाओं से, या फिर नंद महाराज, यशोदा और उनके जो सखागण हैं उनके द्वारा। तो भगवान जैसे कहते हैं कि स्नेह रज्जु भी, भगवान बंध जाते हैं प्रेम के पाश से, लेकिन किसी के भी प्रेम के पास से कृष्ण बनते नहीं हैं। तो विशेष रूप से भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि केवल ब्रजवासियों का प्रेम सर्वाधिक है और ब्रजवासियों का प्रेम ही मुझे बांधने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए भगवान द्वारका में आए, द्वारका में रहे, लेकिन फिर भी उनका मन द्वारका में नहीं था, क्योंकि वो ब्रज उन्होंने छोड़ा तो अपना हृदय वो ब्रज में छोड़ के आए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों को अपने हृदय में धारण करके रखा था। तो इसलिए ब्रजवासियों का जो सर्वाधिक प्रीति की भावना है उसको सारे जगत को एक प्रकार से हाईलाइट करने के लिए वो द्वारका का निर्माण करते हैं। और द्वारका में हर रोज ऐसा एक भी दिन नहीं था कि कृष्णा रोते नहीं थे। और किनके विरह में रोते थे? ब्रजवासियों के विरह में। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों की जो महिमा है वो प्रमुख है, या
सर्वोत्कृष्ट हैं, इसी कारण से वो द्वारका में शिफ्ट होते हैं। बल्कि भगवान मथुरा में भी रहते हैं, उनको कोई नीड नहीं थी। काल यवन को मार के तुरंत वो जरासंध को भी मारते हैं, लेकिन भगवान ने सोचा मैं मथुरा में रहूं तो मेरे जो शत्रु हैं उनको पता चलेगा कि मैं तो मथुरा वासियों से भी अधिक प्रेम ब्रजवासियों से करता हूँ, और ब्रज तो मथुरा से बहुत नज़दीक है। तो भगवान ब्रजवासियों की सर्वाधिक चिंता थी, मैं मथुरा में रहूँगा तो ब्रजवासियों के बारे में पता चलेगा किसी को, मेरे शत्रुओं को, तो मथुरा को कुछ करेंगे नहीं, वो ब्रज को धोखा पहुँचाएंगे। हाँ, तो ब्रजवासियों के लिए वो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। इसलिए भगवान मथुरा को त्यागते हैं और द्वारका चले जाते हैं, मतलब छुपाना चाहते हैं भगवान अपने हृदय की इस गुड़ बात को कि मैं तो ब्रजवासियों से अधिक प्रीति करता हूँ, ताकि इसलिए उनसे नज़दीक रहूँगा तो पता चलेगा अरे इनसे अधिक प्रीति है। तो जानबूझ के भगवान मथुरा से द्वारका शिफ्ट होते हैं। तो इस प्रकार की जो दिव्य प्रेम की भावना है कृष्ण की, जो ब्रजवासियों के लिए थी, क्योंकि द्वारकावासियों का प्रेम कृष्ण को बांध नहीं रख पाता था, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता थी, और जो द्वारकावासी हैं वो केवल 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 कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपे न, उनकी प्रीति नहीं थी एक प्रकार से, उनकी प्रीति तो और सबके लिए भी थी। इसलिए तो नारद या रोहिणी ने कहा, हाँ, जब रुक्मिणी और ये सत्यभामा, ये जो सारी रानियां हैं, ये कंप्लेंट करते थे इनके पास, रोहिणी के पास, कि क्या ऐसा कारण है हे रोहिणी माता, आप तो ब्रज में रह चुकी हैं, जब भगवान रात्रि में सोया करते थे रुक्मिणी आदि के महल में, तो कृष्ण जोर जोर से रोया करते थे, हे माता यशोदा मुझे भूख लगी है, मक्खन है खाने के लिए। अभी नज़दीक जो रुक्मिणी है उनकी नींद टूट जाती थी, हाँ कभी कभी रोहिणी रुक्मिणी का वेणी पकड़ के खींचते थे, हाँ कहते थे हे ललिता, हे श्रीमती राधिका, हाँ हे विशाखा आदि। इस प्रकार से ये रोहिणी सत्य रुक्मिणी सत्यभामा आदि रानियाँ सोचते थे, कभी हम इतनी सेवा कर रहे हैं, कभी हमारा नाम पुकारा नहीं जाता, ये कौन है ब्रजवासी, ने क्या खिलाया है उनको बचपन से, किस प्रकार का भोजन वो खिलाया है कि वो यहाँ इतने बड़े होने के बाद भी वो ब्रजवासियों से बहुत अधिक स्नेह रखते हैं। तो वास्तव में ब्रजवासियों का जीवन 100% कृष्ण के लिए था। रोहिणी ने कहा कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी रानियाँ हो, आपके पास बहुत विशाल ऐश्वर्य है, आप सुंदर भी हो, भौतिक संपन्नता है, लेकिन फिर आपका जो प्रीति है, आपका जो हृदय है, आपने आपके बच्चों को भी दे दिया है। हर रानी के 11 बच्चे थे, तो मतलब रोहिणी माता ने कहा कि आपके हृदय के 12 टुकड़े बनाए गए हैं। आपके हृदय के कितने टुकड़े हैं? 12। और ऐसे 12 टुकड़े इन 11 लोगों के लिए तो हो गए, बच्चों के लिए 11 बच्चे, और एक कौन है उसमें? कृष्णा है। तो ब्रजवासियों के साथ ऐसे नहीं था, ब्रजवासियों का जो कंप्लीट 100% जो प्रीति या हृदय उन्होंने किसके चरणों में अर्पित कर दिया था, तो वो कृष्ण थे। यही एक खासियत थी ब्रजवासियों के पास, क्योंकि भगवान को हम किसी भौतिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक ज्ञान के द्वारा, भौतिक सौंदर्य के द्वारा, भौतिक बल के द्वारा, हाँ, या अपने वैराग्य के द्वारा आकर्षित नहीं कर सकते। भगवान को तो केवल 100% शरणागति से हम आकर्षित कर सकते हैं, और केवल शुद्ध सेवा की भावना से उनको हम आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए ब्रजवासियों को देखा जाए, द्वारकावासियों की और ब्रजवासियों की तुलना करें भौतिक रूप से, तो द्वारकावासियों के पास अमाप ये था, प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य था। हाँ, लेकिन वैसे ब्रज तो सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है, लेकिन फिर भी हाँ उसमें केवल जो प्रेम है भगवत सेवा का या भावना, वो अधिक है, और इसमें क्या है? ऐश्वर्य का भाव है। इसलिए भगवान वास्तव में इसी कारण से द्वारका में शिफ्ट होते हैं, और भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो ब्रजवासियों के संबंध में भगवान के जो कार्यकलाप हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनका श्रवण बहुत पावरफुल है। तो भगवान जगन्नाथ बने भी तो कहाँ बने? द्वारका में बने। द्वारका की लीलाओं को सुन के नहीं बने, कहाँ की लीलाओं को सुन के बने? ब्रज की प्रेम कहानी, हाँ उसको कहते हैं ब्रज लीला कहानी। हाँ, तो ब्रज की जो लीला कहानी है, हाँ उनका जब नरेशन कर रही थी नरेटर, हाँ रोहिणी देवी बेस्ट नरेटर थी। रोहिणी देवी ने रुक्मिणी के महल में सारे रानियों को इकट्ठा किया। देखो कितना विशाल महल होगा, 16,100 रानियां एक महल में। हम इतनी छोटी रूम में स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ जैसे चूहे नीचे बैठे ना, वैसे अलग अलग स्थानों में हम बैठे हुए हैं। तो वैसे रोहिणी ने हाँ रुक्मिणी के महल में सारे रानियों को बुलाया और बिठा दिया, और फिर जो प्रमुख थी रुक्मिणी सत्यभामा, वो क्वेश्चंस पूछने लगी। और रुक्मिणी निरंतर वृंदावन, क्योंकि उसने लाइव देखा था कृष्ण बलराम के बचपन के कार्यकलाप, अपने आँखों से देखे थे और सुने भी थे, इसलिए रुक्मिणी बहुत कुशलता पूर्वक वर्णन करते जा रही थी। और हम देखते हैं कि जब इतना कुशलता पूर्वक उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण बलराम सुधर्मा सभा में थे, कहाँ थे? सुधर्मा सभा में। तो जैसे वह कथा शुरू हो गई, कृष्ण के हाथ कांपने लगे और हृदय ऐसे एक होने लगा, क्या कह सकते, धर धर करने लगा। भगवान ने सोचा रे वहाँ कुछ हो रहा है, कहा रुक्मिणी के महल में कुछ चल रहा है, ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, अभी ऑफिस में है। सुबह रोज भगवान का दिनचर्या क्या होता था, भगवान एक ही समय में 16,108 रानियों के महल में उपस्थित रहा करते थे। ऐसे नहीं कि हर एक रानी का एक 16,108 दिन के बाद नंबर आता था, नहीं, एक ही समय में एक ही हाँ समय में सारे रानियों के महल में कृष्ण विद्यमान रहते थे। और जब सुबह होती थी तो या रात्रि में भी, जैसे नारद देखने गए कि कृष्ण करते क्या है, कैसे अपने पत्नियों को हैंडल कैसे करते हैं, हाँ कैसे व्यवहार आदि करते, जाके देखता हूँ, उनको बड़ी उत्सुकता थी, है कि ना, हमें भी उत्सुकता रहती है। तो नारद तो गए उत्सुकता पूर्वक देखने की कहाँ क्या हो रहा है। तो नारद देखो जो यहाँ कृष्ण किसी को दान दे रहे हैं, वहाँ किसी को ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, वहाँ बच्चों के साथ ना हास खेल रहे हैं, और किसी और हर हर महल में अलग अलग कार्यकलाप हो रहे थे। और सुबह के समय में कृष्ण उठ जाते थे, कब? जब मुर्गा अपनी आवाज़ देता है, वो नेचुरल अलार्म क्लॉक है ना। सिटी में तो हम मोबाइल्स के अंदर वो साउंड फिल किया है और उसको सुनते हैं, लेकिन अब गाँव में रहते हो तो मुर्गियों को चाहे ढक के रखते हैं तो भी उनके पास वो भगवान ने नेचुरल शक्ति दी है, सूर्य उदित हो या ना हो तो उनको पता चलता है कि अभी ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तुरंत वो आवाज़ देते हैं और उठ जाते हैं। जैसे हम स्कूल जाते थे या जल्दी जाना होता था तो हम देखते थे कि अभी मुर्गा जब आवाज़ करेगा तभी उठ जाते थे, जब तक वो बांग नहीं देता तब तक हम सोते रहते थे। तो भगवान द्वारका में जब सुबह मुर्गी की वो बांग की आवाज़ सुनते थे तुरंत उठ जाते थे, मतलब इमरजेंसी। ऐसे नहीं कि अभी आँख खोली फिर थोड़े सा धीरे धीरे हम उठते तो आधा घंटा उठने में लगता है, बाथरूम जाने में और आधा घंटा, फिर भजन कब करेंगे? आँख खुलते क्या करना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुलायम है। वैसे भी वो कितना सॉफ्ट है, मैं आधा तो अंदर चला गया हूँ। तो वहाँ कृष्ण आसक्त नहीं थे, अपने ना रानियों से आसक्त थे ना बेड से आसक्त थे। कभी कभी ये रुक्मिणी आदि वो मुर्गे को गालियाँ देती थी, ये क्यों समय, ये क्यों आवाज़ करता है, हाँ कृष्ण हमसे दूर जा रहे हैं। कृष्ण आप एक आइडियल गृहस्थ को कैसे होना चाहिए है? ये द्वारका की लीलाओं से कृष्ण सिखाते हैं। तो द्वारका की लीलाएं पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, भगवान ने सब कुछ हमें अपने आचरण से सिखाया है कि हमें चाहे दिनचर्या कैसे रखनी है, अपने परिवार के साथ कैसे व्यवहार आदि करना है, हाँ अतिथियों से कैसे व्यवहार करना है, अपने ऑफिस की एक्टिविटीज़ को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ भगवान ने किया है, कुछ बचाया नहीं, और कुछ बच गया था तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने प्रेम नाम संकीर्तन सिखाया। तो ऐसे कृष्ण जब उठते थे तो तुरंत उठ के जब स्नान आदि करके ध्यान करने के लिए बैठते थे, किसका ध्यान करेंगे? कृष्ण भक्तों का करते हैं, वैसे अपने आप पर ही ध्यान करते हो। भगवान सदैव भक्तों के नामों का जप करते हैं और भक्तों का ध्यान करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी आलस के हमें बेड से उठ जाना चाहिए, क्योंकि बेड क्या है? तमोगुण है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में कि बेड लगा होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए? उठते ही व्यक्ति को फोल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव है वो, लगा हुआ दिखता है ना, तुरंत हम बाहर से आते तो लेट जाते हैं। ये स्वाभाविक है जीवात्मा के लिए, क्योंकि रजो और तमोगुण हमें इतना आकर्षित करता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि फोल्ड करके रखो उठते ही। टेम्पल डिवोटीज वहाँ तो कोई बेड तो होते नहीं, वो चटाई डालो और एक तकिया हो या ना हो, हाँ तकिया तो होती नहीं है, जैसे हम दिल्ली में थे तो तकिया नाम की चीज़ ही नहीं आश्रम में 10 साल से, तो चटाई डालो और सो जाओ और सुबह उठते क्या करो? फोल्ड करो और निकल जाओ। लेकिन जब वही चटाई भी बेड तो इतना आकर्षित करता है, चटाई भी यदि ऐसी लंबी हो तो भक्त आते ही उसके ऊपर लेट जाता है, तो वो लेट भगवत धाम जाएगा। इसलिए हाँ, ये जो बेड है वो बहुत अट्रैक्टिव है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे। तो इसलिए हमें भी अपने दिनचर्या में ये सब चीज़ें भागवतम से या कृष्ण बुक से सीखनी चाहिए। भगवान तुरंत उठते थे, अपने नैतिक मॉर्निंग कार्य करते थे, ध्यान लगाते थे, और जो भी हैं उन कुछ ब्रेकफास्ट भी करते होंगे कृष्णा, और फिर निकलते थे अपने ऑफिस के कार्यों में। तो भगवान का ऑफिस का कार्य कहा था? सुधर्मा सभा भवन। तो जब भगवान ने द्वारका का निर्माण किया, नया घर बनाया, तो अलग अलग चीजें अलग अलग लोग ऑफर कर रहे थे। तो जो देवता गण है उन्होंने सोचा कुछ डोनेट करते हैं, तो उन्होंने क्या डोनेट किया? सुधर्मा सभा भवन डोनेट किया। सुधर्मा सभा भवन ऐसे था जो यदि कम लोग हो तो उसकी साइज कम हो जाती थी, ज़्यादा लोग हो तो उसकी साइज अनलिमिटेड लोग उसमें बैठ सकते थे, और जो जिसमें वो बैठेगा उस समय किसी भी प्रकार के ताप कष्ट आदि नहीं होंगे, बुढ़ापा छुएगा नहीं, बीमारियां छुएगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें सुधर्मा भवन के लक्षण थे, और भगवान वहाँ बैठते थे उग्रसेन के दास के रूप में, राजा के रूप में नहीं, किसके रूप में? उग्रसेन, कंस के जो पिता है उग्रसेन वो राजा थे, और भगवान सदैव उनके दास के समान द्वारका में व्यवहार करते थे। तो भगवान जब अपने ऑफिस के कार्यों में निकलते थे तो अभी सुबह के समय में सारे घरों से निकलेंगे कृष्ण, कितने घरों से, और जब आते थे तो एक हो जाते थे रथ पर, कितने हो जाते थे? वन, और फिर निकल पड़ते थे। यही कृष्ण की विशेषता है। तो कृष्ण की ये विशेषता है। तो कृष्ण जब अपने सुधर्मा सभा भवन में जाते हैं, वहाँ अपने ऑफिस के कार्य करते हैं, तो जब उनका मन विचलित होने लगा, जब किसका लेक्चर शुरू हो गया? रोहिणी माता का, रोहिणी, हाँ, और वो भी रुक्मिणी के महल में। तो कृष्ण देखा बलराम भी मेरे साथ है, अभी क्या करूँ? भाग, कई बार होते ना हम ऑफिस से भागना चाहते, जैसे ये सब रेल भवन वाले डिवोटीज या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ ना कुछ बहाना बना के कुछ ना कुछ नोट छोड़ के भागते हैं। तो वैसे भगवान ने सोचा अभी क्या करूँ, तो भगवान ने भी देखा चीज़ें बंद की अपने सारे कार्य और वहाँ से भागे, तो उनको देख के बलराम भी भागे। भागे तो सीधा कहा उन सिग्नल कहा, रेड लाइट कहा थी उनके घर के सामने रुक्मिणी के, वहाँ सीधा गए। तो हम जानते हैं वो लीला जगन्नाथ, हाँ, तो वहाँ सुभद्रा देवी दरवाजे में थी, कैसे खड़े थे, कैसे खड़े थे, ऐसे। हाँ, जैसे बच्चे, आप यदि बचपन में करते हैं तो बच्चे किसी को आने नहीं देंगे, जैसे कई बार फादर ऑफिस से आते हैं तो बच्चे वैसे वेट करते कब पिताजी घर आएंगे, आते तो थोड़ा सा उनको लगता है कि कुछ नहीं, एक अफेक्शन, एक प्रेम का वो आदान प्रदान है, तो बच्चा दरवाजे में ऐसे हो जाएगा, पकड़ेगा ये दरवाजे, अंदर अंदर मत आइए, दोनों पाँव भी फैलाएगा, इधर एक पाँव, इधर एक पाँव, इधर एक हाथ, ऐसे पकड़ेगा। तो ऐसे ही सुभद्रा देवी खड़े थे, तो उस समय क्योंकि उसकी ये सेवा थी कि अंदर, हाँ, क्योंकि वो केवल लेडीज के लिए क्लास था, है कि नहीं, वो क्लास किसके लिए था, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुष अलाउड नहीं थे उसमें। तो फिर भगवान आए तो देखा भी क्या करे, तो भगवान आए तो वो इतना ऐसे लाउड स्पीकर था या नहीं था पता नहीं, लेकिन सुनाई दे रहा था बाहर, तो भगवान सुनते हुए आया और उधर खड़े हो गए। जैसे कोई व्यक्ति नशे में होता है तो हिलता डुलता रहता है और फिर अचानक रुक जाता है, तो वैसे भगवान रुक गए, एक सुभद्रा की एक ओर रुक गए और बलराम इस ओर। फिर इस कृष्ण कथा को वो सुनते रह गए, कंटिन्यूसली सुनते जा रहे थे, और अचानक ये सारे लोग भावा वेश में आ गए। कौन सा वेश? भाव आवेश, कई प्रकार के वेश है, तो भाव भी एक प्रकार का वेश है। तो भावावेश में आए तो भगवान के ना हाथ बचे, ना पैर बचे, चरण भी नहीं रहे, सारे अंदर चले गए। और अभी ये बेचारी सुभद्रा ऐसी थी तो ये दोनों के कारण उसके हाथ बिल्कुल ही अंदर चले गए, इन दोनों के हाथ तो ऐसे थोड़े से रह गए, लेकिन सुभद्रा को हाथ है क्या? देखा आपने विग्रह को सुभद्रा के? सुभद्रा के हाथ नहीं है। कारण क्या था कि वो ऐसे हाथ करके खड़े थे, ये दोनों यहाँ खड़े हो गए तो उसके हाथ पूर्ण रूप से अंदर चले गए। तो भगवान एक प्रकार से सिखाना चाह रहे थे कि ये जो ब्रज प्रेम कहानी है, ब्रज कथा है, ये कितने पावरफुल है, जिसको श्रवण करने मात्र से भी कृष्ण, श्रवण करने से कृष्ण का रूप परिवर्तित हो गया। और भगवान और अपने बहन सुभद्रा के साथ इस विशेष रूप से खड़े थे, बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, हाथ अंदर चले गए थे, पांव अंदर चले गए थे, और फिर भी सुन रहे थे, फिर भी क्या कर रहे थे, हमारा हाथ थोड़ा टूट जाए, पांव कुछ खरोच आ जाए तो हम सबसे पहले कुछ कहते हैं, क्लास में नहीं जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ भगवान की सारी चीजें अंदर चली गई है, फिर भी वो सुनने में बिल्कुल निमग्नता थी, भगवान कंटिन्यूसली सुनते जा रहे थे, और हम न सुनने के लिए बहाने बनाते हैं। तो वहाँ उस समय नारद आते हैं, और नारद का मैंने उस दिन बताया था, नारद का काम क्या है, एडिंग सम फ्लेवर्स, मसाले ऐड करना। अभी मुझे लग रहा है आप कुकिंग करोगे तो नारद का याद आएगा, जब आप सब्जियों में मसाले डालोगे तो किसका याद आएगा, और बहुत अच्छा है। इसलिए लाइफ बहुत इंजॉयबल है, केवल कृष्ण और उनके भक्तों से कनेक्ट कर दो उसको, और थोड़ा अपना दृष्टिकोण को बदलो, शास्त्रों के दृष्टि से देखो तो क्या है, आनंदे हृदय नाचे, हमारे पास भौतिक चीजें है या नहीं है, लेकिन हमारा हृदय सदैव आनंद से नाचने लगेगा, हर व्यक्ति के लिए वही सर्वोत्कृष्ट आनंद है, वही सर्वोत्कृष्ट सुख है। तो नारद पहुंचे वहां, और नारद जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। अभी ये तीनों तो सुन रहे थे, जैसे ही आवाज चली गई कृष्ण के कानों में तो कृष्ण फिर से कॉन्शियस हो गए, कौन कह रहा है मैंने देखा, मैंने देखा। नारद ने जोर से कहा मैंने देखा, मैंने, तो भगवान को तो क्या देखा, कहते मैंने देखा है आप चाहे जितना मर्जी छुपाओ, मैंने क्या है आपके विशेष रूप को देखा है। तो फिर भगवान बहुत खुश थे नारद से, तो नारद कहा अब बताओ क्या बुन चाहिए, क्या वर चाहिए। तो नारद ने कहा आपका ये जो विशेष ये रूप है ना, ये प्रकट कराओ आप कलयुग में सबके हित के लिए। तो भगवान फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा आदि के रूप में एक प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, और सारे जगत को अपना प्रसाद और अपना दर्शन, जगन्नाथ दो चीज़ों से उद्धार करते जीवों का, प्रसाद से और दर्शन से। तो इसलिए भगवान ये भी स्थापित करना चाह रहे थे कि ये जो ब्रज कथा है वो कितनी शक्तिशाली है, और उसमें कितनी निमग्नता चाहिए, और भगवान स्वयं
पूर्ण रूप से उसमें निमग्न हो गए थे। और बल्कि कोई मंदिर नहीं आता, हम किसी को पूछते हैं बहुत दिन हो गए प्रभु जी आप मंदिर क्यों नहीं आए, तो कहते हैं आजकल प्रॉब्लम चल रहे बहुत सारे, है ना, समस्याएं चल रही है, बल्कि अशांत चल रहा है जीवन। तो वास्तव में शांत जीवन प्राप्त करने के लिए मंदिर आना प्रमुख कार्य है। अभी यदि परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं भागवत क्लास में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्या चल रहा है मेरे जीवन में, हाँ मृत्यु आ गई मेरे सामने, ऐसा यदि परीक्षित महाराज कहें तो फिर भागवतम का जन्म नहीं होता। मतलब जब प्रॉब्लम हो तो हमें अधिक गंभीरता से पकड़ना चाहिए। और बल्कि उनको पता था कि सातवें दिन में तक्षक आके मुझे काटेगा, लेकिन फिर भी उस तक्षक का कुछ भय नहीं था उनको। जब वो क्लास में बैठे भी थे तो बिल्कुल एक प्रकार से निश्चिंत होकर बैठे थे और टोटली कृष्ण कथा में वो निमग्न हो गए थे। तो इसलिए हमें जानना चाहिए, और बारंबार इस चीज़ को दोहराया जाता है कि सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है कृष्ण की जो वंडरफुल जो कथाएं हैं जिनको नियमित रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से वही व्यक्ति कनेक्ट होता है जिस व्यक्ति ने भगवान के बारे में श्रवण करने में टेस्ट डेवलप किया है। और उस जब हम टेस्ट डेवलप होता है तब वास्तव में हम कृष्ण से कनेक्ट हो गए हैं, और ऐसा जो टेस्ट है वो हमें मृत्यु के समय में बचाता है। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं क्योंकि नाम कलयुग में प्रमुख है, फिर भी परीक्षित महाराज कृष्ण कथा में नाम आदि गुण रूप लीला है, इसलिए वो बैठ गए भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। तो इसी प्रकार से हमें ये जो भगवत कथा है उनके बारे में सुनने में सदैव लालायित या उत्साहित होना चाहिए। और हम देखते हैं उसके आइडियल उदाहरण कौन थे, रुक्मिणी देवी। कौन? हाँ, भगवान भगवान भागते हैं रुक्मिणी देवी के लिए। तो भगवान रुक्मिणी देवी के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर भागते हैं। इसी कारण से ये जो द्वारका नगरी है जहाँ भगवान उनकी जो पहली रानी है रुक्मिणी देवी को अपने पास ले आते, सबसे पहले किसी को चूज किया कृष्ण ने तो वो कौन थी और क्या क्वालिटी थी उनमें? हाँ, बाकी और रानियां तो थी भगवान की, कई सारी और 8 रानियां, मैं नाम भूल गया था तो मैं आज ढूंढ के उनके नाम लिख रहा था, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंध्या, नग्नाजिति जिनका दूसरा नाम सत्या है, भद्रा, लक्ष्मणा, जाम्बवती। तो रुक्मिणी को भगवान सबसे प्रथम स्थान देते हैं, बल्कि रुक्मिणी भी बहुत सिंसियर थी, थोड़ा रुक्मिणी के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जब भगवान जरासंध से पराजय एक प्रकार से स्वीकारते हैं, भागते हैं प्रवर्षण पर्वत से कूद लगा के द्वारका की ओर जाते हैं, जैसे मैंने सुबह कहा उनका मूल कारण क्या था, क्यों इतना भाग रहे थे द्वारका? लेटर आया था, अभी तो ईमेल्स आते हैं या एसएमएस आते हैं या फोन आते हैं, तो लेकिन वहाँ ये रुक्मिणी देवी का लेटर आया था। तो जब ये द्वारका पहुँचे तो सबसे पहले द्वारका में बलराम ने विवाह किया। बलराम का विवाह किससे हुआ था? रेवती से, राजा जो रेवत थे उनकी जो पुत्री थी, बल्कि रेवती बहुत क्वालिफाइड युवती थी। तो देखा कि कौन क्वालिफाइड व्यक्ति है इसके जिनसे मैं इनका विवाह करूं, तो कोई दिख ही नहीं रहा था, इसलिए वो सीधा अपनी पत्नी का पुत्री का हाथ पकड़ कर ले गए सत्यलोक। कौन से लोग? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा को सबका पता है कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, तो पूछा ब्रह्मा बताओ क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है। उन्होंने कहा अभी तुम आए हो, इतना समय हो गया है कि ना तुम्हारा राज्य रहा है ना लोग रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो द्वापर चल रहा है उस समय भगवान कृष्ण और उनके जो भ्राता हैं बलराम हैं, तो ये रेवती बलराम के लिए उचित है, आप जाओ और बलराम से इनका विवाह कराओ। तो अभी ये रेवती किसी और योग की थी और बहुत ऊँची थी, जैसे आज सुन रहे थे ना, मुचुकंद कितने ऊंचे थे? 10 ताड़ के वृक्ष के से इतने ऊंचे। तो वैसे ही रेवती बहुत ऊंचे थे। जब लाया इनको द्वारका में रेवती को, तो बलराम ने देखा, अरे इतनी बड़ी पत्नी, हाइटेड इतनी कैसे होगा? तो अपना जो उनका हल है, हल जो हल का ये सोचो, हल का ये नोक है, इसको लिया, इसके सर में लगाया ऐसे और खींचा नीचे, छोटी हो गई साइज। सेम साइज, मैच प्रॉपर होनी चाहिए। रेवती यार सही हो गई, रेवती और फिर वारुणी, ऐसे दो पत्नियों से विवाह करते हैं। तो उसके बाद भगवान, तो उसी समय जो रुक्मिणी है वो महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसको विदर्भ कहते हैं, वहाँ एक टाउन है आज भी है जिसका नाम है कुंडिनपुर, वहाँ भी इस्कॉन टेम्पल भी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस्कॉन को लैंड दिया है जहाँ रुक्मिणी का जन्म हुआ था, तो लोकनाथ महाराज ने वहाँ टेम्पल डेवलप किया है। तो वहाँ रुक्मिणी, क्योंकि भगवान वासुदेव हैं तो रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी हैं, तो ऐसे रुक्मिणी का जन्म वहाँ हुआ था एक प्रकार से, जिनके पिता का नाम था भीष्मक। तो नारद भीष्मक के घर में भी जाते थे और भीष्मक के घर में जाकर हमेशा कृष्ण के बारे में बोला करते थे। तो जब नारद कृष्ण का वर्णन किया करते थे तो उस समय ये जो रुक्मिणी है अपने पिता के साथ सुनने के लिए आकर बैठती थी और कृष्ण के बारे में सुना करती थी, बहुत अटेंटिवली सुना करती थी। जैसे मैंने लिख रहा था कि कैसे हमें सुनना चाहिए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है जो सही श्रोता है, वो कैसे हैं, चातक पक्षी के समान है। चातक तो आपके दिमागों में बैठ गया होगा, ऐसे एक लेक्चर नहीं है कि जिसमें मैंने चातक का नाम नहीं लिया हो। तो चातक पहला मतलब अलग अलग प्राणियों की तुलना पद्म पुराण में तीन प्राणियों से की हैं जो बेस्ट श्रवण करने वाले व्यक्ति हैं, और तीन प्राणियों से की हैं जो बेस्ट श्रोता नहीं हैं। तो पहला जो अच्छा श्रोता है उसको कहा गया है चातक बर्ड, जो चातक पक्षी हैं। जैसे चातक के बारे में मैंने कहा, चातक पक्षी थोड़ा ना क्वालिटी कॉन्शियस है। कौन सा कॉन्शियस है? पानी पीऊंगा तो क्वालिटी वाटर, हाँ, तो पानी कहाँ मिलावट का नहीं, सीधा बादलों से जब गिरे वही पानी पीऊंगा। और समर में फास्टिंग, निर्जला, पूरे समर में चातक क्या रखता है? निर्जला। और जब वृष्टि आती है मई के एंड में तो चोंच ऊंचा करके जल को पीने के लिए तत्पर रहता है। इस प्रकार से क्वालिटी कॉन्शियस है, जब क्लाउड से जल आता है उसी को ही पीता है। तो वैसे ही जो भक्त होता है वो भी प्रॉपर परंपरा में आधारित जो कृष्ण कथा है उसी को ही सुनता है, इधर उधर की कथाएं नहीं सुनता। ये नहीं कि टेलीविजन ऑन कर दिया और वहाँ सारे दुनिया के बिजनेस बना के रखा है भागवत कथा का, कृष्ण कथा का, उनके द्वारा सुनते हैं लोग, हाँ, तो ऐसे नहीं। तो कोई भी चीज़ के बारे में सुनता नहीं कृष्ण कथा के अलावा, और वह भी प्रॉपर सोर्स और प्रॉपर परंपरा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो श्रोता है एक टक अपने चोंच ऊपर करके सुनता है। चोंच का मतलब क्या है? हमारी गर्दन, क्या गर्दन का ऐसे कुछ होते, बस सुनते रहते हैं, हाँ कुछ होते हैं ऐसे, बिल्कुल। जैसे प्रभुपाद वीडियो आप देखोगे तो उस वीडियो में प्रभुपाद जो क्लास देते तो कुछ डिवोटिस देखा, बिल्कुल ऐसे सुनते हैं, तो लगता है कि कितने अटेंटिव हैं। तो दूसरा जो श्रोता है वो तोता है, हाँ, तोता, तोते से उसकी तुलना की गई है। तोता का गुण क्या है? वो सुनता अटेंटिवली है, अंडरस्टैंड करता है और रिपीट करता है। तो वैसे ही एक श्रोता को सोता नहीं होना चाहिए। श्रोता को कैसे होना चाहिए? ध्यान से सुने और समझे, अंडरस्टैंड करे और फिर उसको रिपीट करे। तो ये तोता उसी प्रकार से, हाँ, और रिपीट करने का मतलब है अपने जीवन में वो डालता है जो वो सुनता है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी चेंज के। और इन चीज़ों का कई प्रकार से समझ सकते हो। कई बार हम सुनते कथा कि मुझे ना लेक्चर देना है इसलिए चलो एक लेक्चर सुनता हूँ, हाँ तो ये भी एक इतना अच्छा श्रोता नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में कई बार डालता नहीं है उन चीज़ों को, केवल दूसरों को सुनाने के लिए कोई और प्रवचन वो लेके सुनता है, नोट बनाता है, रिपीट करता है, अपना बिजनेस ख़त्म, खुद के जीवन में लागू करता नहीं। वो कहता है कि उनके जीवन में लागू करना है, मेरे जीवन में नहीं। तो इस प्रकार का जो श्रोता है, हाँ, जो जिसकी तुलना तोते से की गई है, और जो तीसरा है जिसकी तुलना मछली से की गई, फिश, तो फिश कम्प्लीटली, हाँ, ये श्रोता कम्प्लीटली निमग्न हो जाता है। मतलब जैसे फिश है या मछली है, अपनी आंखें बंद नहीं करता करती ना, मछली आंखें हमेशा खुली रहती हैं। तो क्लास में भी जो उन्नत श्रोता है, जो निमग्न है, वो अपनी आंखें बंद नहीं करता। आंखें कैसे रखता है, कैसे रखता है, खुली ऐसे एक टक, जैसे को कुछ आंखों से पिया जा रहा है, आंखों से क्या कर रहा है, कृष्ण कथा को पी रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आंखें हैं, आंखें जब बंद होती है तो सारा सिस्टम बंद हो जाता है, नहीं तो जैसे आप देखो ना, क्या कहते हैं, डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है, हाँ, वही यदि बंद है तो आपका बाकी चीज़ें यदि ऑन है तो कुछ योग्य नहीं है। तो वैसे ही आंखें बंद है तो फिर धीरे धीरे कान भी बंद हो जाते हैं। जैसे जपा में हमारा सारा जपा कोलैप्स कैसे होता है, कैसे कोलैप्स होता है, हम क्या करते हैं, आंखें पूरी बंद, पहले तो सोचते थोड़ी सी बंद करता हूँ, फिर आँखों को एक बीमारी है, थोड़ी सी हम नकल ना करें, तो जब बंद करते थोड़ी सी तो वो बेचारी पूरी बंद हो जाती है, पूरा सिस्टम बंद होने लगता है। कभी कभी एक डिवोटी के साथ चैंट कर रहा था तो मेरे साथ खराटे मार रहा था, जपा करते करते क्या खराटे, मैं खुद हैरान हो गया कि मतलब पहले तो बिल्कुल ऐसे गंभीरता से बैठा और फिर ध्यान से आंखें खुली थी और फिर आंखें बंद कर दी, और आंखें बंद करके हरिनाम चला गया। हरिनाम की जगह किसने ली, खराटों ने ली, कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो आईज, क्योंकि हम कोई शुद्ध भक्त नहीं है, हम कोई महान वैष्णव नहीं है, हम तो साधक हैं, इसलिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो आंखें बंद तो सब कुछ बंद। तो वैसे ही ये जो मछली है जिसकी तुलना, या ऐसे श्रोता की जो तुलना है मछली से की गई है, तो एक टक सुनता रहता है, मतलब इसको कहते हैं फुल्ली निमग्न हो जाता है पूर्ण रूपेण। तो ये हो गए पॉजिटिव श्रोता, और दूसरे कौन है, अभी सेकंड बैच नेगेटिव श्रोताओं का। तो पहला नेगेटिव श्रोता है बैल, कौन है, तो बैल के आगे घास डालो या गार्बेज डालो खाता रहेगा। तो वैसे ही है हमारी स्थिति, कुछ लोग ऐसे होते कुछ अंतर नहीं, सब कुछ एक है, चाहे वो मायावादी बोल रहा है या कुछ और कथाएं हो रही हैं, तो वो सब खाता रहता है उसमें, सुनता रहता है, हाँ। और चाहे कृष्ण कथा हो रही है या फिर भौतिक चीज़ों का वर्णन हो रहा है, तो भौतिक चीज़ें भी सुनता रहेगा, माया कथा भी सुनते रहेगा, और फिर कृष्ण कथा भी सुनते रहेगा। तो ऐसे लोग, ऐसे श्रोता की तुलना बैल से की गई है, तो हमें कम से कम इससे ऊपर उठना चाहिए। तो मतलब कृष्ण कथा भी सुनेगा, और जहाँ बहुत सुंदर प्रजल्पा हो रहा है वहाँ भी जाके अपना कान लगाएगा, और इधर उधर की फालतू बातें करता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा या सुनता रहेगा। जैसे हम कृष्ण कथा को सुनने के लिए उतने अटेंटिव नहीं होते जितना कुछ और कथाएं होती है, तो बड़े सावधान हो जाते हैं, कान हमारे क्या होते हैं, लंबे होने लगते हैं, और ध्यान से सुनते हैं। और दूसरा है सीआर, दूसरा श्रोता इसकी तुलना पद्म पुराण सीआर से करता है। सीआर का एक प्रॉब्लम क्या है, वो जंगल के बीच में ही चिल्लाता रहेगा, किसके बीच में, और कभी भी चिल्लाता रहेगा। तो कुछ श्रोता होते हैं वो केवल क्लास में बाधा डालने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए, बस फालतू की कुछ ना कुछ पिन लगाते रहेंगे, जानबूझ के मोबाइल ऑन रखेंगे, बोला गया है कि साइलेंट में रखो, तो कैसे रखेंगे, पूरा लाउड हाँ उसका इसमें रखेंगे, उसको लाउड वॉइस में रखेंगे। मतलब जो श्रोता है इनकी तुलना सियार से करें। सियार जंगल में चिल्लाता रहता है, तो वैसे हम भी आते हैं तो हम भी बाधा डालते रहते हैं कृष्ण कथा में कुछ ना कुछ। कैसे कैसे बाधा डाल सकते बताइए, हम सबको एक्सपीरियंस है कैसे कैसे डाली जा सकती बाधा। हाँ वक्ता कुछ बोलेगा तो बीच में अपना परपट देना शुरू करेंगे तात्पर्य, और हाँ आपस में डिस्कशन हो रहा होगा। और
सर्दियों में कुछ बुराई करते हैं,
हाँ ये बहुत अच्छा है। कृष्ण कथा सुनने के लिए आएंगे लेकिन कुछ वो स्वेटर बुनाई करते रहेंगे। हाँ कथा सुनते सुनते, क्योंकि 16 माला पेंडिंग है, और जब करते रहेंगे, और फिर वो व्रत भी लिया है ना, 9 बजे तक सारी माला करूँगा उसके बाद ही प्रसाद लूँगा, तो फिर कॉम्प्रोमाइज। हाँ क्लास के बीच में मालाओं का रट्टा लगाया जा रहा है और साथ साथ कृष्ण कथा भी सुनाई जा रही है। तो ऐसे और अभी तो इतने डिवाइस आ गए हैं, तो हम क्लास के बीच में व्हाट्सएप भी चेक करेंगे, फेसबुक में अपडेट भी भेजेंगे, हाँ और कुछ नेट से भी कुछ, हाँ ईमेल भी चेक करेंगे और साथ साथ कुछ भेजते रहेंगे। तो ये सारे जिसके फॉलोअर्स हैं सियार, ये बाधा डालने वाले हैं कई बार। और ऐसे लोग कुछ प्रश्न भी पूछेंगे ना, उनका उत्तर दो, उत्तर कंप्लीट होता है कि नहीं तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे, उसको समझेंगे नहीं पहले उत्तर को। तो ऐसे जो श्रोता है वो सियार के भांति हैं, बाधा डालना उनका प्रमुख गुण है। और तीसरा जो श्रोता है वो ऊंट है, ऊंट से उसकी तुलना की गई है पद्म पुराण में। मतलब ऊंट जैसे कहते हैं ना, प्रभुपाद कहा करते थे जैसे सुअर है, सुअर गंध खाते रहता है, मल खाते रहता है, शरीर भी मल से भरा रहता है, उसको आप पूरा गरम गरम हलवा बना के प्लेट जाकर उसको दे दो और कहो मिस्टर पिग एक गरम गरम हलवा लीजिए, तो कहेगा नहीं मेरा हलवा ऑलरेडी सर्व हो चुका है मेरे लिए, मुझे जाने दो। हाँ तो वैसे मतलब जो ऊंट है उसके लिए डेलिशियस फूड स्टफ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कांटे खाएगा, क्या खाएगा? तो ऐसी हमारी स्थिति है, मतलब वो अच्छा फूड स्टफ को रिजेक्ट करेगा और कांटे ही खाएगा। तो वैसे ही है लोग, गीता श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा जो डेलिशियस फूड है उसको रिजेक्ट करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब मंडेन टॉक्स भौतिक बातें करने में उनको गदगद हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, हाँ उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना हाँ ऊंट से की गई है। यदि हम भी अपने जीवन में देखें तो ऐसी स्थिति है, मैक्सिमम हम यही हैं, ऊंट है, सियार है, बैल इनके फॉलोवर हैं। वैसे शास्त्रों में इन कुछ प्राणियों पर कुछ ज़्यादा ही कृपा की गई है, कुत्ते के ऊपर, प्रभुपाद ने कुत्ते के ऊपर तो ज़्यादा ही कृपा की, कुत्ता और सुअर है ना, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स बिल्ली का भी प्रभुपाद ने बहुत नामोच्चारण किया। तो वैसे ही कृष्ण कथा में टेस्ट आना बहुत कठिन है, और जब तक नहीं आएगा ना तब तक भौतिक टेस्ट बना रहेगा। जैसे महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम, क्या नाम था, बहुत महान डिवोटी थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। 400 साल पहले अपने शरीर के साथ वैकुंठ चले गए, गरुड़ा उनको लेके आए, लाने के लिए आए थे। तो ऐसे तुकाराम जिनका एक गुण था कि जो इतना उनका टेज था कृष्ण कथा को बोलने के लिए, मतलब शाम को 5 बजे वो शुरू करते थे सुबह के 5 बजे तक, और कृष्ण कथा बोलते जाते थे, वर्णन करते जाते, लेकिन उनको ना क्वालिफाइड श्रोता नहीं मिल रहा था, वो ढूंढते थे। अभी क्लास शुरू हो जाती थी तो बेचारे 5 बजे क्लास शुरू हो गई तो फिर दो थोड़े लोग इकट्ठा तो बहुत हो जाते थे शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता था उठना कहाँ से शुरू होते हैं, पीछे से, और जिनको पहले उठना होता है ना सबसे पीछे जाके बैठते हैं। ये हमारा गुण है क्योंकि हमें पता है कि हम तो केवल अटेंडेंस लगाने के लिए, कुछ होता है ना मुंह दिखाने के लिए आते प्रोग्राम में, कैसे आते मुंह दिखाने के लिए। तो तो भगवान फिर ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखते, हर ना अपना मुंह दिखाते हैं। तो वैसे ही ये तुकाराम का इतना अनुराग था कृष्ण कथा का वर्णन करने में, तो उनको कोई क्वालिफाइड श्रोता नहीं मिल रहा था और लोग भागते जाते थे, तो बहुत डिफिकल्ट था। तो एक दिन एक श्रोता उनको मिल गया। कितने मिले? मतलब जब उन्होंने क्लास शुरू की, कृष्ण का महिमा बोलते जा रहे, गुणगान करते जा रहे, बीच में भजन भी गा रहे हैं, और फिर जब शाम को शुरू हुआ तो सुबह के 4 बज गए। देखा सारे तो पहले से उठ के चले गए थे, लेकिन एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो तुकाराम महाराज, इतने तुकाराम जो महाराज हैं, जो वैष्णव हैं, वो बहुत आनंदित हो गए हैं और उन्होंने कहा, सही में इतने लंबे समय का मैं इंतज़ार कर रहा था कोई श्रोता मिले जिनको मैं कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण कथा का भंडार है। सही में आप वास्तव में असली श्रोता हूँ, आप ही मिले हो मुझे एकमात्र श्रोता। तो जब ये सब चीज़ें बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, महाराज, उन्होंने कहा आप यहाँ अभी तक बैठे हो कृष्ण कथा सुनने के लिए, सारे जग के लोग उठ के चले गए, तो बताओ क्या कारण है। तो उन्होंने कहा, महाराज आप जिस चद्दर पर बैठे हो ना प्रवचन देने, वो मेरी है, वो मुझे घर ले जानी है। तो ऐसी हमारी स्थिति है, कई बार प्रोग्राम में कुछ सामान हमारा अटक जाता है ना, तो हम लटक जाते हैं प्रोग्राम में। तो वैसी स्थिति, इसलिए तुकाराम महाराज कहा करते थे कि बहुत डिफिकल्ट है कलयुग में रियल श्रोता को प्राप्त करना, रेयरली कोई कृष्ण कथा को सुनना उत्साहित है या सुनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ जो रुक्मिणी देवी हैं, वो भी ऐसे नहीं कि कोई नाम के लिए आके बैठती थी अपने फादर के पास, नहीं, नारद आते वो दौड़ती थी और जाकर सुना करती थी। नारद तो फ्लो है, जैसे गंगा बहती है ना नॉन स्टॉप, वैसे नारद के मुख से तो कृष्ण कथा का फ्लो है, एक के बाद एक के बाद वो वर्णन करते जाते हैं। भीष्मक की जो कन्या गंभीरता से सुना करती थी रुक्मिणी देवी, और फिर सुनते 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 कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, क्योंकि जो सुनोगे ना वैसे हमारा चरित्र डेवलप होता है। मैंने कल बस में वो मदर और बेटे का वो स्टोरी बताया था, है ना, जैसे सुना वैसे उस बालक का चरित्र डेवलप हुआ और फाइनली उसने क्या किया, अपनी माँ का कान काट लिया। तो वैसे ही सुनने से चरित्र का विकास होता है, सुनने से कैरेक्टर हमारा बिल्ट होता है, डेवलप होता है। तो वैसे क्योंकि जो सुनते हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी के समान कार्य करना चाहते हैं। जैसे देखो टेलीविजन का इतना प्रभाव है क्योंकि उससे सुनते हैं, और वैसे हम रहना चाहते हैं, वैसे बोलना चाहते हैं, वैसे व्यवहार करना चाहते हैं, वैसी चीज़ें अर्जित करना चाहते हैं। उसमें दो है, वहाँ सुनते भी और देखते भी हैं। तो उसी प्रकार से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रुक्मिणी जब सुना करती थी गंभीरता से और वो निमग्न हो जाती थी कृष्ण के चरित्र को सुन के, और सुनते सुनते रुक्मिणी को पता ही नहीं चला कि वो कृष्ण से प्रेम कर बैठी है, कृष्ण उसके प्रेमी बन गए हैं। तो उन्होंने सोचा, बल्कि उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया और उन्होंने सोचा कि विवाह करने योग्य कोई है तो वह कृष्ण है, जिनके चरणों में मैं अपने आप को अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे जो विदर्भ राजा थे भीष्मक, उनके तो 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली, और आखिरी जो कन्या थी उनका नाम था रुक्मिणी। तो ऐसी ये जो रुक्मिणी है, वो उनके जो बड़े भाई हैं रुक्मी, जिन्होंने उनकी शादी तय की थी शिशुपाल के साथ। किसके साथ? क्योंकि रुक्मी भी कृष्ण से ईर्ष्या करता था और शिशुपाल तो ईर्ष्या का मूर्तिमान रूप था, तो बहुत ईर्ष्या से भरा था शिशुपाल कृष्ण के प्रति। और फिर इन्होंने इनका विवाह तय किया। और ये जो रुक्मिणी है, रुक्मिणी देवी है, जो भगवान के बारे में सुनकर या अपने हृदय में उन्होंने ठान लिया था कि कृष्ण ही मेरे पति हैं, और रुक्मिणी देवी सारे गुणों की खान थी, सद्गुण, सुंदरता, सदाचार, उनका वाक शैली आदि, तो फिर जब उनको पता चला कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ होने वाला है, तो रुक्मिणी सदैव उदास रहा करते थे, तब उन्होंने सोचा मुझे एक संदेश भेजना होगा, एक मैसेज भेजना होगा कृष्ण के लिए। तब उन्होंने सोचा किसको भेजो, कोई बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए। तो विश्वास पात्र व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण है, जो सत्वगुण में होते हैं वो विश्वास पात्र, रज और तमोगुणी व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है। तो ब्राह्मण को उन्होंने चूज किया, और ऐसा ब्राह्मण जो विष्णु भक्त थे और जो सत्य भाषण बोला करते थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण के हाथ उन्होंने एक लेटर लिखा, लंबा लेटर, श्रीमद् भागवतम में पूरा लेटर दिया है रुक्मिणी का। हाँ, उन्होंने क्या क्या लंबा संदेश लिखा, उस लेटर को लेकर वो पहुंच जाते हैं वो ब्राह्मण, और ब्राह्मण पहुंचने वाले थे उससे पहले कृष्ण आ गए थे, और कृष्ण उस समय संध्या के समय वो ब्राह्मण पहुंचा, तो कृष्ण अपने व्यास आसन पर या सिंहासन पर बैठे थे, और उनको पता चला कि वो ब्राह्मण आया है, तो कृष्ण सिंहासन से दौड़ते हैं उस ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए, उसको बिठाते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके चरण धोते हैं, और उनके और उनको भोजन आदि कराते हैं, उनको लेटने के लिए एक सुंदर शैया प्रदान करते हैं, आराम करते समय करने के बाद फिर कृष्ण जाते हैं, और जाके क्या करते हैं, उनके चरणों को अपने गोद में लेते हैं, गोद में लेकर मसाज करते हैं, और उनको फिर पूछते हैं कारण। ये एटिकेट्स है। हाँ, कोई घर में आते क्यों आए हो, वो बेचारा वैसे पानी पानी हो जाएगा। हम तो प्रॉब्लम क्या है, दरवाजे से छुट्टी, हमारी स्थिति क्या है, मॉडर्न पीपल वो दरवाजे से भगाना चाहते हैं। हम पहले तो देखते दरवाजा खोले या ना खोले, वो लगा के रखा है ना, जिससे देखते हम कौन है। तो फिर तो वैसे भगवान इस ब्राह्मण का इतना आदर सत्कार करते हैं, और उनको कहते चरण उनके गोद में लेकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण आप संतुष्ट तो हो, क्योंकि ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वो संतुष्ट होना चाहिए, आप सारे विधियों का पालन तो कर रहे हो, आपका मन सदैव शांत रहता है। तो ब्राह्मण दुखी हो रहा था कि स्वयं भगवान है, कृष्ण है, जो मेरे चरणों को गोद में लेके मसाज कर रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो ब्राह्मण सोच रहा था कि भगवान अपने आचरण से सारे जगत को शिक्षा देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं वैष्णव और ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ जो सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं, और वो सदैव दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, अपने हित की बहुत कम चिंता रहती है, वो सदैव दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ये ब्राह्मणों का विशेष गुण है, भक्तों का विशेष गुण है। तो भगवान कहते बताओ बताओ, हाँ क्या प्रयोजन है जिसके लिए आप आए हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रयोजन तो यही है कि मैं एक विशेष लेटर लेके आया हूँ, हाँ एक विशेष पत्र लेके आया हो, हाँ रुक्मिणी के द्वारा दिया गया है जो पत्र है। तो फिर भगवान ऐसे नहीं कि भगवान ने अकेले वो लेटर पढ़ा, तो भगवान ने वो उनसे ही पढ़वाया, किन से, ब्राह्मण से। एक प्रकार से देखा जाए ये कहते हैं कि ये भागवतम का फर्स्ट लव लेटर है, तो जो ब्राह्मण पढ़ रहा है, और पहले शब्द क्या लिखे थे रुक्मिणी ने, रुक्मिणी लिखती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वतामते निर्विश कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विश्यति चित्रम अपत्रम में। तो वो कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वतामते कि हे कृष्ण आपके जो गुण है वो वास्तव में सुनने योग्य है। हाँ भुवन सुंदरम शुण्वतामते निर्विश कर्ण विवरे, जब आपके बारे में कोई सुनता है तो आपके जो आकर्षक गुण है वो जब कानों के छिद्रों से प्रवेश करते हैं हृदय में, हरतो अंग तापम, हरतो अंग तापम, समझ में ना, अंग तापम, अंग ताप मीन्स बुखार, क्या तो बुखार की बेस्ट मेडिसिन क्या कहते हैं रुक्मिणी, सुनना, हम ढूंढते क्रोसिन, लेकिन यार रुक्मिणी क्या कह रहे हैं, हरतो अंग तापम, जब आपके बारे में सुनती हो या सुना जाता है कृष्ण, तो सारे जो ताप है वो दूर हो जाते हैं। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। रूपम, आपका जो रूप है वो वास्तव में आँखों के लिए कुछ सर्वोच्च चीज देखने योग्य कोई वस्तु है या तो वो आपका रूप है, इसलिए वो कहती है कि आँखों के लिए अखिलार्थ लाभम सर्वोत्कृष्ट लाभ है। तो ये अच्युत विशति चित्तम अपत्रम में, तो फिर वो थोड़ी सी शर्माती है, शर्माते हुए वो कहती है कि मैं तो मैंने अपनी सारी लज्जा को छोड़ के आप मेरा जो मन है ना आप में लग गया है, मेरा मन मैंने आपको दे दिया है, मैंने क्या हो गई हूँ मैं लज्जा को त्याग दिया है। इस प्रकार से रुक्मिणी लिखती है और फिर आगे वो कहते कि हे मुकुंद, कौन सी ऐसी कन्या है जो आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी, आप तो पुरुषोत्तम हो, आप तो नरों में श्रेष्ठ हो, इसलिए भगवान को नरसिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
नरसिंह।
तो आपकी सारी चीजें मोहित करने वाली हैं, आपका नाम, आपके रूप, आपके गुण, आपके लीलाएं, हर चीज जो कृष्ण से संबंधित है वो सारे कृष्ण के समान आकृष्ट करने वाली है। और रुक्मिणी लिखते आगे कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों के प्रति बहुत अधिक दयालु हो और मैं तो आपकी आपकी एक सेविका बनने की इच्छा रखती हूँ, दासी, क्योंकि भक्त हमेशा यही भावना रखते हैं। हे नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतय। हे कृष्ण, मुझे अपने चरण कमलों में एक धूलि का कण बना लीजिए, ये स्थान दे दीजिए। तो इसलिए तो वो कहते कि हे कमल नयन कृष्ण, आप क्या करो, मुझे ले चलो यहाँ से, यदि आप मुझे नहीं ले जाओगे तो ये उचित नहीं होगा कि जो सिंह के लिए रखा हुआ भोजन है वो सियार ले जाएगा। सियार की तुलना किससे करती है? शिशुपाल से। कितनी इंटेलिजेंट थी रुक्मिणी, कितनी बुद्धिमान थी, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जो शास्त्रों में इसका विशद वर्णन है। तो फिर रुक्मिणी कहती है कि मैंने चाहे जितना अनुष्ठान यज्ञ जन कल्याण या ब्राह्मणों की सेवा की होगी, गुरु की सेवा की होगी, और इनसे नारायण मुझसे या कृष्ण भगवान मुझसे प्रसन्न हो, हाँ तो इसके बदले में प्लीज़ आप आइए और मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मुझे ले चलिए यहाँ से। हाँ, और वो फिर वो बताती है कैसे मुझे ले जा सकते हो। हाँ, वो दोनों चीज़ें, पहले तो कहते ले जाओ, फिर वो योजना, प्लान, किसका प्लान था वो रुक्मिणी का। कहते कि जब विवाह हो, विवाह के पहले हमारे कुल की परंपरा है कि जो कन्या है वो दुर्गा देवी का दर्शन करने के लिए जाती है, तो उस समय आप आइए और उस समय मुझे वहाँ ऑन द वे उसी रूट से मुझे उठा के ले जाइए। और उस समय मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं होते, बल्कि 4-5 लोग होते हैं, उनकी मदर और कुछ सेविकाएँ वगैरह, जब रुक्मिणी दुर्गा का दर्शन करने के लिए जाने वाली थी तो वो एक प्रकार से अधीर हो गई थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण सारे शिवजी गणेश देवी देवताओं से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। तो ऐसे रुक्मिणी जब भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना लिख के भेजती है तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कई बार हम किसी धाम में नहीं जा पाते तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण के लिए प्रेयर लिखनी चाहिए अपनी प्रार्थना और वो भेज देनी चाहिए। कोई भक्त जा रहा है, प्रभु जी ना अब जब जाओगे तो ना भगवान के सामने मेरी ये प्रार्थना को पढ़ी है, तो ये सब चीज़ें हम रुक्मिणी से सीख सकते हैं। तो भगवान फिर रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं हमारे साथ, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें शक्ति आदि प्रदान करते हैं। तो क्योंकि कुछ आप रखोगे, प्रेजेंट करोगे, तभी तो भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसलिए रुक्मिणी का ये आदर्श उदाहरण है। तो ब्राह्मण ने ये सब पढ़ा और ब्राह्मण ने कहा थोड़ा फास्ट करो, क्या करो, मतलब तो कल विवाह होने वाला है और ब्राह्मण आज पहुंचा है। तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा जल्दी करना होगा, और तब कृष्ण ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और कहा कि हे ब्राह्मण, जितना रुक्मिणी मुझे प्राप्त करने के लिए उत्सुक है उतना ही मैं रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए कहते कि क्योंकि मेरा मन सदैव भीष्मक की जो पुत्री रुक्मिणी है उनमें लगा रहता है, उनके विचारों में मग्न होता है। तो मतलब रुक्मिणी सदैव कृष्ण के बारे में सुनती थी तो भगवान के बारे में कोई सुनता है गंभीरता से तो कृष्ण भी उस व्यक्ति के लिए अटेंटिव हो जाते हैं, कृष्ण भी उस व्यक्ति के बारे में निरंतर हाँ सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी हाँ को प्राप्त करने के लिए या उनके कष्ट का निवारण करने के लिए कृष्ण उसी समय दौड़ते हैं, दौड़ते मतलब अपना रथ लेते हैं जिसमें शैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बालक आदि हाँ जो घोड़े थे, और निकलते 1000 मील दूर। कृष्ण द्वारका में है और वो महाराष्ट्र में है, हाँ रुक्मिणी कहाँ है, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास, नागपुर के आसपास है वो स्थान, अमरावती, अमरावती अभी उसका नाम है। तो भगवान 12 घंटे में पहुँचते हैं दारुक के साथ, और ब्राह्मण भी था। तो रुक्मिणी देवी सोचती है कि अभी तक क्यों नहीं कृष्ण आए, वो ब्राह्मण अभी तक क्यों नहीं आया। रुक्मिणी देवी बहुत दुखी हो गई, रुक्मिणी सोचने लगी कि शायद हाँ मैंने कुछ अपराध किया है जिसके कारण कृष्ण नहीं आ रहे हैं, या ब्राह्मण भी नहीं आए, या फिर कुछ देवी देवता मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सोची जा रही थी। तो उस समय वो रो रही थी अपने आँखें बंद करके, क्योंकि कल सुबह तो शिशुपाल के साथ विवाह होने वाला है। तो उस समय हाँ उनकी जो शरीर है उसमें शुभ लक्षण प्रकट होने लगे, उनकी बाई पलक हाँ भुजाए जंगा हाँ जो स्फुरित होने लगी या स्फुरन हो उठा, और उस समय उन्होंने देखा कि सामने तो ब्राह्मण आ गए हैं। तो वो समझ गए अभी ब्राह्मण आ गए तो मतलब कृष्ण आ गए हैं। तो बल्कि जो रुक्मिणी है वो कृष्ण को अपना सर्वस्व देना चाहते थे। तो अभी ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण से उनको पता चला कि कृष्ण स्वयं आ गए हैं यहाँ आपके नगरी में आपको ले जाने के लिए। तो इतना बड़ा कार्य उस ब्राह्मण ने किया है रुक्मिणी के लिए। तो ब्राह्मण सोचते कि मैं क्या करूँ, इसको क्या अर्पित करूँ, है ना। जैसे एक होता है कृतज्ञता, क्या कहते हैं कृतज्ञ होना, कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए, कृतज्ञ। ये गुण भगवान में है। भगवान के लिए कोई व्यक्ति छोटा कार्य करता है, लॉक करिए, कोई व्यक्ति छोटा कार्य करता है तो भगवान उसकी छोटी सी सेवा के प्रति भी कृतज्ञ रखते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। हाँ कभी कृतज्ञ, उसके विपरीत क्या है, कृतज्ञ, हाँ कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं होते। तो वैसे ही भावना रुक्मिणी ने प्रकट की कि अभी इस ब्राह्मण को दे दूँ तो क्या दूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा एक चीज है, रुक्मिणी ब्राह्मण को हाँ प्रणाम करती है, उनके चरणों में गिर पड़ती हैं, और यही वास्तव में ये कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। जो रुक्मिणी ने प्रकट किया उस ब्राह्मण के सामने अपने प्रणाम के द्वारा, और वो ब्राह्मण संतुष्ट होता है। तो जब कृष्ण बलराम आदि बलराम भी आ गए, और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह भीष्मक ने सबका स्वागत किया, और वो समय आ गया जब रुक्मिणी पूजा के लिए निकल रही थी अपनी माता चार सखियों के संग में, अंगरक्षक और कुछ सारी प्रजा खड़ी थी, और प्रजा को केवल लगता था रुक्मिणी का विवाह तो कृष्ण से होना चाहिए, शिशुपाल से नहीं। सारे इवन जो भीष्मक उनके पिता है वो भी चाहते थे कि कृष्ण से विवाह हो, लेकिन अभी बड़ा भाई अटक जाता है जो फोर्स करता है तो फिर कोई इसको रोक नहीं सकता। तो फिर शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। तो जब रुक्मिणी सुबह के लिए निकली पूजा के लिए इन सबके साथ, तो फिर लाइन में बहुत सारे आसपास राजकुमार रुक्मिणी को देख रहे थे, क्योंकि रुक्मिणी के समान सौंदर्यवती कोई नहीं थी। कुछ राजकुमार रथ के ऊपर बैठे थे, खड़े हो गए, कुछ घोड़े के ऊपर थे वो भी बिल्कुल सीधे हो गए, रुक्मिणी को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ कई सारे अपने घोड़ों से नीचे, रथ से नीचे सब गिरने लगे, और फिर अचानक रुक्मिणी अपने बाई उंगली, बाई मीन्स ये हाथ ना, कौन सा हाथ, हाँ तो बाई उंगली में कुछ अंगूठी या कुछ अलंकार ऐसे ठीक कर रही थी, तो अचानक उनका दृष्टि किस पे पड़ा, कृष्ण पर। बहुत सारे राजकुमार आदि थे तो अचानक ऐसे अपनी उंगलियों को ठीक करते हुए अंगूठी या कुछ तो ऐसे दृष्टि पड़े तो उनको कृष्ण नजर आए, और जैसे कृष्ण पर उनका दृष्टि पड़ा तो वो कभी नहीं देखा था, पहली बार उन्होंने देखा था कृष्ण को, और वो पहचान गई कि ये कौन है, कृष्ण है। श्रवण के द्वारा आप भगवान को पहचान सकते हो वास्तविक रूप से। तो जब पहचाना तो भगवान कृष्ण तुरंत तैयार होते हैं और अपना रथ लेके आते हैं और रुक्मिणी को उस भयावह कष्टमय विपदा में स्थिति से उठाते हैं और ले जाते हैं। तो वैसे तो सारे राजकुमार इधर उधर गिरे हुए थे और सपने देख रहे थे, उनके बीच में कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी को ले जाते हैं। तो जरासंध भी वहाँ थे, कौन थे, जरासंध भी आए थे, शिशुपाल भी थे, बहुत सविश शिशुपाल की क्या हालत हुई होगी, मैरिज का दूल्हा तैयार खड़ा है क्या कहते दूल्हा वो खड़ा था बिल्कुल सब कुछ बांध के ड्रेस वगैरह पहन के। अभी बस टाइम आ गया है, थोड़े समय के कुछ घंटे भी रह गए, उसी बीच में भगवान, तो मतलब हम चाहे जो मर्जी प्लान करें अपने जीवन में, कृष्ण का जो प्लान है वो फाइनल है, इसलिए कृष्ण सर्व कारण कारण है। तो ये जरासंध चिल्ला के उठा, चिल्लाने लगा कि देखो हाँ सिंह का जो भोजन है वो सियार लेके जा रहा है। कृष्ण की तुलना सियार से करते, फिर घमासान युद्ध आदि होता है और फिर वो निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी देवी को अपना बना लेते हैं और रुक्मिणी का एक ही गुण था, गंभीरता से कृष्ण कथा के प्रति वो अटेंटिव थी। तो ये जो विवाह है इसको कहा जाता है राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? तो आठ प्रकार के विवाह हैं। पहला विवाह है जिसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह का मतलब है कि माता पिता अरेंज करते हैं वर और वधू के लिए, पुत्र और पुत्री के लिए जो भी संबंध हैं, और जिसमें अच्छे फैमिलीज को चूज़ किया जाता है और सेम उनका वर्ण होता है और दहेज आदि इन्वॉल्व नहीं होता, उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है। और फिर जो माता पिता हैं प्रॉपरली शास्त्रों के आदेशानुसार अपने पुत्री का कन्यादान करते हैं। दूसरा है प्राजपत्य विवाह। प्राजपत्य विवाह का मतलब है कि जो पुत्री है उसको गिफ्ट में दे देते हैं जो माता पिता हैं। और तीसरा विवाह है जिसको कहते हैं दैव विवाह। कई बार माता पिता के पास धन नहीं होता, बहुत गरीब होते हैं, विवाह करने के लिए उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती जिसमें कोई फीस नहीं कुछ नहीं, तो वो क्या करते हैं अपनी बेटी को तैयार करते हैं और ओपनली आह्वान करते कौन इसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। तो ये सारे धर्मशास्त्रों में ये सारे विवाह आदि का वर्णन है। और जो चौथा विवाह है जिसको कहा गया है अर्ष विवाह, कि जो पति है पत्नी को प्राप्त करने के लिए ये देता है कन्या शुल्क। जनरली क्या होता है पत्नी वाले पति को धन देते हैं, लेकिन इस विवाह में पति वाले पत्नी को धन देते हैं। जैसे पांडु का विवाह हुआ था माद्री के साथ, या दशरथ का विवाह हुआ था कैकेयी के साथ, उन्होंने कैकेयी के घर वालों को कन्या शुल्क दिया, उसके बाद ही विवाह किया था। फिर एक विवाह है जिसको कहते हैं आसुर विवाह। तो पति जब सुटेबल नहीं होता पत्नी के लिए लेकिन फिर भी जबरदस्ती मैरिज होता है, कई बार होता है ना कोई बूढ़ा पति है 100 साल का, पत्नी अभी नवयुवती है, तो कहते ना कि वो धन दे देता है घर वालों को और विवाह कर लेता है, तो आसुरी विवाह है। और गांधर्व विवाह मतलब दोनों तैयार होते पति पत्नी और स्वयं ही किसी के अनुमति के बिना, पेरेंट्स के अनुमति के बिना दोनों विवाह कर लेते हैं। और सातवां ये जो कृष्ण ने विवाह किया था ये कौन सा था, राक्षस विवाह, जिसमें जो पत्नी है वो तैयार है उनसे विवाह करने के लिए, तो फिर पति उनसे विवाह कर सकता है। और सातवां है पैशाच। पैशाच का मतलब है जो पत्नी है या स्त्री है वो एक प्रकार से भूत पिशाच ने पछाड़ी हुई है या फिर नशा में है, उनको पता ही नहीं कि विवाह कब हो गया, ऐसी अवस्था में विवाह होता है तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस विवाह को संपादन करते हैं और केवल रुक्मिणी के एक गुण को देखते हैं, जो गुण कृष्ण को सर्वाधिक
आकृष्ट करता है, जिनके कारण भगवान सारी योजनाओं को खत्म करके आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान सबसे पहले रुक्मिणी से विवाह करते हैं और उसके उपरांत द्वारका में फिर सत्यभामा से, जाम्बवती से विवाह करते, फिर सत्यभामा से और फिर कालिंदी से विवाह करते हैं। कालिंदी कहाँ मिली थी भगवान को? हस्तिनापुर में। भगवान जब आए थे तो एक दिन अर्जुन के साथ भगवान भ्रमण करने के लिए गए वन में, अर्जुन शिकार के लिए गया था तो भगवान नदी के किनारे बैठे थे और अर्जुन को ऐसे घूमने भेजा तो अर्जुन गए तो उनको एक युवती नज़र आई, तो उस युवती को पूछा कि आप कौन हो, क्या विवाह करना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं यमुना देवी हूँ, मैं यमुना साक्षात, इसलिए उनका नाम था कालिंदी। तो फिर वो कहते कि मैं तो केवल कृष्ण से ही विवाह करूँगी, तो उनको लाते हैं और कृष्ण उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज उनके विवाह की योजना बनाते हैं और बड़े बड़े महल बनाते हैं जिसमें कालिंदी के साथ कृष्ण निवास करते हैं। और फिर भगवान मित्र विंध्या से विवाह करते हैं जो उज्जैन की राजकुमारी थी। फिर उसके बाद भगवान नग्नाजिति से विवाह करते हैं जिनका दूसरा नाम था सत्या। उनके फादर ने ये स्वयंवर रखा था जिसमें 7 बैल रखे थे, कोई व्यक्ति उन बैल को नकेल डाले तो उनसे विवाह कर सकता है, तो भगवान ने वो सारी चीज़ें की। फिर भगवान भद्रा से विवाह करते हैं, लक्ष्मणा से विवाह करते हैं जो मद्रास की थी, और लक्ष्मणा उसको बलपूर्वक ले आते हैं और जाम्बवती का तो हमने और से सुना ही था। तो इस प्रकार से भगवान अपने 8 रानियों के संग में विवाह करते हैं, लेकिन फिर बाकी 16,100 ये सब राजकुमारियाँ कौन उनको लेके चला गया था? बस भौमासुर अलग अलग राजकुमारियों को सब जगह से इकट्ठा कर रहा था, तो उसने अपने महल में उनको लॉक करके रखा था 16,100 राजकुमारियों को। और वो सारी राजकुमारियाँ कृष्ण को प्रार्थना कर रही थी। फिर कृष्ण सत्यभामा के साथ जाते, उनसे युद्ध करते हैं, उनको मारते हैं और उन राजकुमारियों को छोड़ते हैं। तो जब तो उनसे, क्योंकि इनको भगा के ले गया था, कौन विवाह करेगा, और उन्होंने उन सारे राजकुमारियों ने अपने आप को कृष्ण को समर्पित किया था, तो फिर भगवान उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते, पत्नियों के सबको, और द्वारका में उनको निवास प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो कार्य है वो असाधारण है जो उन्होंने द्वारका में किए थे। तो ऐसे भगवान द्वारका में निवास करते हैं अपने इन सब रानियों के संग में और कई सारी लीलाओं का संपादन करते हैं, लेकिन इनके साथ होने के बावजूद भी भगवान का जो चित्त है, भगवान का जो मन है, सदैव वृंदावन की ओर आकृष्ट रहता था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।